ओम शांति। सारा दिन बैठ बैठ के थक तो नहीं गए हैं? जो थक गए हैं वहां हाथ उठाए। जो थक गए हैं एक भाई, अच्छी बात है। ज्ञान योग से हमारी थकान दूर होती है। बाबा कहते हैं कि यदि बाबा की याद में माउंट आबू से आबू रोड तक भी पैदल जाओ तो थकेंगे नहीं। सुना है कभी मुरली में? सुना है ना, माउंट आबू से आबू रोड तक 25 किलोमीटर तो होगा, 25-30 किलोमीटर तक जाओ तो भी थकेंगे नहीं। वास्तव में व्यक्ति अपने व्यर्थ विचारों के कारण ज्यादा थकता है बजाय स्थूल कर्म के। स्थूल कर्म से हम इतना नहीं थकते, हमारी एनर्जी इतनी ज्यादा नष्ट नहीं होती है जितनी कि व्यर्थ विचारों से। ये जो व्यर्थ विचार हैं हमें योगी भी नहीं बनने देते हैं। लगभग हम सबके जीवन का ये अनुभव है कि हम योग तो करना चाहते हैं लेकिन योग हमारा लगता नहीं है। योग में जिस तरह की अनुभूति होनी चाहिए उस तरह की अनुभूति होती नहीं है। मन बार बार हमारा भटकता रहता है। बाबा कहते हैं एक तरफ कि योग से अतींद्रिय सुख की अनुभूति होती है। अतींद्रिय सुख, एक ऐसा सुख जिसका अनुभव आत्मा को यदि एक बार हो जाए तो ये जो इंद्रियों का आकर्षण है, भौतिक सुख सुविधा के साधनों का आकर्षण है, उससे मन सहज ही उपराम हो जाता है। अतींद्रिय सुख इंद्रिय सुखों पर हमेशा ही भारी पड़ता है, एक अलौकिक सुख, परंतु वो सुख हमें भासता नहीं है। हम योग में एकाग्रता का अनुभव कर नहीं पाते हैं। हम सब यहाँ योग को सीखने आए हैं। मैं आत्मा हूँ, श्री बाबा मेरा पिता है, उसको याद करना है, देही अभिमानी बनना है। वास्तव में ये एक बेसिक ज्ञान है। सीखना माना व्यवहारिक रूप से योगी बनते जाना। तो हम सब बाबा के घर में आते हैं, वहां अपने अपने जगहों पर, सेवा केंद्रों पर योग सीखने जाते हैं, योग की गहराई में उतरने की कला सीखने जाते हैं। तो यहां भी 3 दिनों तक आप सीखेंगे। पहला दिन है आपका, उम्मीद करते हैं अच्छा अनुभव हो रहा होगा। अभी अभी आप लोगों ने नमः शाम का योग किया, कैसा लगा? वास्तव में हमारा मन भटकता क्यों है? इधर उधर साधनों में, विकारों में जाता क्यों है? क्योंकि हमें योग के सुख का अनुभव नहीं होता है। बेशक हम अपने को योगी मानते हैं और कहते भी हैं, परंतु योग का जो सुख मिलना चाहिए यदि वो मिलने लगे तो विकारों से, साधनों से, धन से स्वतः ही हमारा मन उपराम होता जाएगा। तो योगी बनना है, योग की गहराई में उतरना है और यही हमारी सदगति का मार्ग है। पिछले 3-4 दिनों से बाबा योग और अमृत वेले पर बहुत बल दे रहे हैं। कल की मुरली में भी क्या था, सुबह आंख खुलते ही क्या करना है, किसको गुड मॉर्निंग करना है। फिर बाबा ने ये भी कहा कि बच्चे सुबह जब तुम्हारी आंख खुले तो सबसे पहले किसकी याद आनी चाहिए? पर हमें किसकी याद आती है? बोलना सहज है पर हम ऑनेस्ट हो करके अपने आप से पूछें कि जैसे ही हमारी आंख खुलती है क्या याद आता है। नेचुरल, बाथरूम में जाना है, स्नान करना है, या तुरंत ऑफिस जाना है, खाना बनाना है, बच्चों को तैयार करना है, क्या याद आता है। तो बाबा ने बोला कि उठते ही सबसे पहले बाबा की याद आए। क्यों? क्योंकि हमारी सदगति का एक ही मार्ग है, वो है सेवा बाबा। जितना जितना याद करेंगे हमारे सिर पर पापों का जो बोझ है वो उतरता जाएगा। ये जो हमारे सिर पर 63 जन्मों के पापों का बोझ है ना, हमारे जीवन की सभी समस्याओं का कारण है। ये हम सब जानते हैं, लेकिन जानते हुए भी हम व्यवहारिक रीति उस तरह से समझ नहीं पाते ज्ञान को। जीवन में जब भी कोई समस्या आती है हम परेशान हो जाते हैं, दूसरों को दोष देते हैं, कई बार बाबा को भी दोष देते हैं। वास्तव में हमारे जीवन में जो कुछ भी उतार चढ़ाव आ रहा है, जो भी संघर्ष है, उसके पीछे हमारे 63 जन्मों का पाप कर्म है, पहला। दूसरा, हमारे खुद के संस्कार, 5 विकारों से जनित संस्कार जो हैं, वो हमारी समस्याओं के कारण हैं। ये 2 मुख्य कारण हैं, और इन दोनों को यदि ठीक करना है तो हमारे पास एक ही साधन है, योग। ज्ञान नहीं, ज्ञान से क्या मिलता है, आज की मुरली में था, क्या मिलता है ज्ञान से? ज्ञान से क्या प्राप्त होता है? आज की मुरली आप लोगों ने सुनी ध्यान से, बाबा ने कहा कि सतयुग में यदि तुम्हें बादशाही चाहिए, साहूकारी चाहिए, तो वो किससे मिलेगा? ज्ञान से धन मिलता है, पद मिलता है। हम सतयुग में साहूकार बनते हैं, उससे पाप नष्ट नहीं होते हैं, उससे हमारे संस्कार सुधरते नहीं है। ये दोनों काम योग से होते हैं, और योग हमारा गहरा होता जाए उसके लिए सबसे पहली शर्त ये है कि हमारा मन शांत रहे, हमारे मन में कम से कम संकल्प हो। योग अच्छा लगे, हम अच्छा योगी बने, एक सिद्ध योगी बने, उसके लिए कई कारण हैं, उसके पीछे कई कारण हैं, लेकिन जो उसमें सबसे प्रमुख कारण है वो ये कि हमारा मन दिनों दिन शांत होता जाए, हमारे मन के संकल्प कम होते जाएं, हमारे मन की गति कम होती जाए। यदि मन की गति अधिक है, मन में बहुत अधिक विचार हैं, तो हम कभी भी एक अच्छा योगी नहीं बन पाएंगे। है ये बात सही? सही है ना? ज्ञान भी यही कहता है, ज्ञान भी यही कहता है। बाबा भी कहते हैं बच्चे ज्यादा सोचो नहीं, निश्चिंत रहो, सब बाबा पर छोड़ दो। परंतु ये इतना सहज नहीं है। जीवन में जब कोई बात आती है, समस्याएं आती हैं, कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, तो मन में विचार चलते हैं। 5 विकार तरह तरह के मन में विचार उत्पन्न करते हैं, तो ये विचार हमें योगी नहीं बनने देते। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, जो मनोविज्ञान मानता है, आज का आधुनिक विज्ञान, उसके अनुसार एक सामान्य व्यक्ति एक सामान्य अवस्था में करीब 20,000 से 25,000 विचार प्रतिदिन उत्पन्न करता है। जब हम तनाव की स्थिति में होते हैं तब तो हमारे संकल्पों की मात्रा बढ़ जाती है, लेकिन अगर सामान्य स्थिति में है तो भी एक आम व्यक्ति प्रतिदिन 20,000 से 25,000 विचार अपने मन में उत्पन्न करता है और उसमें अधिक से अधिक विचार कौन से प्रकार के होते हैं। नॉर्मली हर व्यक्ति चार प्रकार के विचार उत्पन्न करता है। हम जो भी संकल्प करते हैं उसकी चार कैटेगरीज होती हैं, या तो वो विचार अच्छे होंगे, सकारात्मक होंगे, पॉजिटिव होंगे, या फिर वो नकारात्मक होंगे, विकारों से जनित होंगे, या फिर साधारण विचार होंगे, नहाना है, खाना है, मार्केट जाना है, नौकरी पर जाना है, सब्जी लानी है, बच्चों को तैयार करना, साधारण, या फिर व्यर्थ विचार, जब मन में कोई काम न हो, कोई विचार न हो, तो बीती बातों का चिंतन करना, व्यर्थ का चिंतन, जिसको जो बीत चुका है, जिससे हमारा कोई सरोकार नहीं। तो आम रूप से हम चार प्रकार की कैटेगरीज के विचार उत्पन्न करते हैं। अनुभव क्या कहता है कि इसमें से 80% जो विचार हैं वो व्यर्थ और नकारात्मक किस्म के होते हैं। अच्छे विचार हमारे मन में बहुत कम चलते हैं। हम चाहते भी हैं कि हम पॉजिटिव सोचें, तो भी हम नहीं सोच पाते। 80% विचार, मोर देन 80% संकल्प व्यर्थ और नकारात्मक किस्म के होते हैं। और हर व्यर्थ विचार के पीछे मन की एक छोटी ऊर्जा का हिस्सा नष्ट होता है। हर संकल्प के पीछे मन की थोड़ी शक्ति नष्ट हो जाती है। अगर सारे दिन में हम इतने विचार व्यर्थ और निगेटिव क्वालिटी के करते हैं तो हमारी कितनी ऊर्जा रोज नष्ट हो रही है। और एक लंबे अंतराल में धीरे धीरे हमारा मन कमजोर होने लगता है, और जब मन कमजोर होने लगता है तो कमजोर मन से हम कभी भी योग नहीं कर सकते, क्योंकि योग करने के लिए मन की ही जरूरत है। तन थोड़ा स्वस्थ न हो तो भी चलेगा, लेकिन यदि मन हमारा कमजोर है तो हम अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाएंगे। मन ही वो साधन है जिसके द्वारा आत्मा परमात्मा को याद करती है, तो मन का सशक्त होना बहुत जरूरी है। अब प्रश्न ये उठता है कि इतने जो विचार उठते हैं मन के अंदर, उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि जब तक हम कारण को नहीं समझेंगे तब तक निवारण भी हम कर नहीं पाएंगे। तो मन में जो भी विचार उत्पन्न होते हैं उसके पीछे दो प्रमुख कारण हैं। पहला हमारी आंखें और दूसरा हमारे कान। हम इन आंखों से दिन भर जो कुछ भी देखते हैं और इन कानों से हम सारा दिन जो कुछ भी सुनते हैं, सब कुछ हमारे मन के अंदर स्टोर हो जाता है और फिर मन खाली समय में उन बातों का चिंतन करता रहता है। कई बार नींद में भी मन उसका चिंतन करते रहता है। स्वप्न क्या है? नींद में मन का सोचना, नींद में मन का चलना, इसे ही स्वप्न कहते हैं। तो जो कुछ हम इन आंखों से देखते हैं, जो कुछ इन कानों से सुनते हैं, मन उसका ही चिंतन करता है। अब हमें देखना है कि हम जो कुछ देखते हैं और जो कुछ सुनते हैं उसकी क्वालिटी क्या है। हम सारा दिन सुनते हैं, देखते हैं, कौन सी बातें हमें ज्यादा अच्छी लगती है? रोज मुरली सुनने के लिए बाबा कहता है तो भी हम हफ्ते में एक दो दिन मिस कर देते हैं। भगवान के महामार्ग, कहीं सत्संग हो रहा हो, बहुत अच्छी बातें हो रही हो, कितने लोग वहां मिलेंगे? बहुत कम लोग मिलेंगे। लेकिन कोई फिल्म थिएटर हो, उसके बाहर कितने लोग मिलते हैं? कोई दो अच्छी बातें अगर हमें सुना है तो बोर होने लगते हैं, नींद आने लगती है। मुरली में भी नींद आती है ना कईयों को, लेकिन अगर परचिंतन की कोई बात हमें सुनाने लगे तो। कई बार हमें कोई सुनाता भी नहीं है, दो लोग आपस में बात करते रहते हैं किसी तीसरे के बारे में, हम कान लगा करके सुनते हैं क्या बातें कर रहे हैं, किसकी बातें कर रहे हैं, हमारा कोई मतलब नहीं उस बात से, लेकिन फिर भी हमारी वहां रुचि है, दूसरों को जानने की रुचि, दूसरों को देखने की रुचि, दूसरों को समझने की रुचि, इस संसार के प्रति और इस संसार के लोग के प्रति हमारी रुचि है, देह और देह की दुनिया। हम सड़क पर जा रहे हैं, दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, हम नहीं जानते उनको, दोनों लोग कौन हैं, फिर भी हम क्या करते हैं, वहां खड़े हो जाते हैं, हाँ भाई क्यों लड़ रहे हो आप लोग, किस बात पे लड़ रहे हो, फिर हम देखते हैं, पूछेंगे किसने किसको मारा, कौन भारी पड़ रहा है, कौन कमजोर पड़ रहा है, हमारा कोई मतलब नहीं, हमने देखा सुना सब अंदर गया। आगे जाते हैं, सामने फिल्म थिएटर है, हम देखते हैं कौन सी फिल्म लगी है, हमको फिल्म देखना नहीं है, इजाजत नहीं है बाबा की, हमको भी पता है कि हमको देखना नहीं है। कोई आपसे पूछे भाई आप लोग तो ब्रह्मा कुमारीज वाले हो, आप ये पोस्टर क्यों देख रहे हो, क्या जवाब देते हैं, बाबा ने फिल्म देखने से मना किया है, पोस्टर देखने से थोड़ी मना किया है, पोस्टर तो देख सकते हैं ना। अच्छा उस पोस्टर को देख के करेंगे क्या, उसकी उपयोगिता हमारे जीवन में क्या है, कुछ भी नहीं, पर वहां से भी हमने कुछ व्यर्थ अपने मन में इकट्ठा कर लिया। इस तरह सारे दिन की दिनचर्या में अलग अलग जगहों से हम न जाने कितनी अनवांटेड बातें अपने अंदर भरते रहते हैं और फिर मन उसका ही चिंतन करता है और धीरे धीरे कमजोर होता जाता है और कमजोर मन एकाग्र नहीं हो पाता है और मन यदि एकाग्र ही न हो तो फिर बाबा से शक्ति हमें मिलती नहीं है, क्योंकि जो शक्ति मिलती है उसी से तो हमारे पाप जलते हैं, हमें सेटिस्फेक्शन भी नहीं होता है। आप देखिए योग में बैठिए और अपने आप को साक्षी होकर के देखिए, हमारा मन एक घंटे में कितनी देर एकाग्र हुआ और कितनी देर इधर उधर भटका, और फिर आप उसको और बारीकी से चेक करें कि हमारा ये मन कहां कहां जा रहा है। जो कुछ देखा होगा ना बीते समय में, आज कल परसों या एक महीना पहले, दो महीना पहले, एक साल पहले, उन्हीं चीजों को वो याद करता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि ये जो दो कर्मेंद्रियां हैं इन पर हमारा बहुत ज्यादा ध्यान रहना चाहिए। हम योगी बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये डिसाइड बहुत हद तक, काफी हद तक ये दो कर्मेंद्रियां डिसाइड करती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे इस संसार को क्या समझो, क्या समझो, जैसे कि ये संसार हमारे लिए है ही नहीं। मम्मा एक बार बॉम्बे गई हुई थी और हमारे जो रमेश भाई जी थे ना, रमेश शाह जी, वो उनको लेने आए थे स्टेशन से, एक कार में बिठा करके उनको ले जा रहे थे। बीच में एक ओवरब्रिज आया, ओवरब्रिज के दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा होर्डिंग लगा हुआ था। उन दिनों नई नई एक लहर चली थी, बाबा ने एक बात पर बहुत ज्यादा बच्चों को प्रेरित करना शुरू किया था कि बच्चे बहुत बड़े बड़े पोस्टर्स बनाओ, बड़े बड़े चित्र बनाओ, जैसे अंधे के आगे आई ना। तब तो यज्ञ छोटा था, यज्ञ में समृद्धि भी नहीं थी, छोटे छोटे हमारे प्रदर्शनी के चित्र बनते थे। तो बाबा बच्चों को बहुत उमंग उत्साह दिला रहे थे कि बच्चे बड़े बड़े बनाओ। तो रमेश भाई ने बोला, मम्मा आपने वो होर्डिंग देखा, कितना बड़ा था ना, हम भी अगर इतने बड़े बड़े बाबा के चित्र बनाए तो। तो मम्मा ने कहा, कौन सा होर्डिंग? तो रमेश भाई जी ने कहा, वही जो ओवरब्रिज क्रॉस करते ही पड़ा था। तो मम्मा ने बहुत सुंदर जवाब दिया, मम्मा ने कहा कि मम्मा इस संसार को देखते हुए भी नहीं देखती है। मम्मा ऐसे ही तो मम्मा नहीं बनी ना, किया है उन लोगों ने साधना, हमारी आंखें खुली हैं, फिर भी वही चीज देखिए जो हमारे लिए है, जो आवश्यक है। जब हम लोग शुरू शुरू में ज्ञान में आए तो सेवाएं इतनी हमारे पास होती नहीं थी, और ज्ञान योग का तो नशा शुरू में ज्यादा ही रहता है। योग ज्ञान की समझ तो इतनी थी नहीं, परंतु योग के बारे में बहुत नशा रहता था। तो हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया था, करीब 8-10 भाइयों का एक ग्रुप बनाया था, और हर हफ्ते किसी न किसी एक दादी से या किसी न किसी एक बड़े भाई से मिलते थे, और उनसे ये जानने की कोशिश करते थे कि आपने अपने जीवन में ऐसा क्या पुरुषार्थ विशेष किया जिसके कारण आज आप इतने बड़े पद पर स्थापित हैं, इतने महानता को प्राप्त किया है आपने। इसी श्रृंखला में हम लोग एक बार जगदीश भाई जी से मिल रहे थे। आप सब जानते हैं जगदीश भाई जी को? कौन कौन जानता है, हाथ खड़ा करें। हमारे संस्था के एक प्रमुख पिलर, हमारे साहित्य विभाग की लगभग अधिकतर किताबें उन्होंने ही लिखी, एक बहुत ही उच्च दर्जे की योगी तपस्वी आत्मा। हम लोगों ने उनसे भी यही प्रश्न पूछा कि भाई जी, आपने अपने जीवन में ऐसी क्या साधना की, या आप कौन सी ऐसी विशेष बात पर ध्यान रखते हैं जिसके कारण आप इतने अच्छे योगी बन गए। कई बातें बताई होंगी जो अब मुझे याद नहीं, लेकिन एक बात उनकी अब तक मुझे याद रहती है। उन्होंने कहा कि जब मैं सड़क पर चलता हूं तो मेरा प्रयास ये रहता है कि आगे की 10-20 फीट की जो सड़क है वही दिखाई पड़े, उसके अलावा दाएं क्या है बाएं क्या है वो मुझे न दिखाई पड़े। कितनी बड़ी बात है ना कि हम संसार में चल रहे हैं लेकिन हमें केवल अपना उतना ही मार्ग दिखाई पड़े जितने की आवश्यकता है। दाएं क्या हो रहा है बाएं क्या हो रहा है इससे हमारा कोई मतलब न हो, तब तो जाकर के ये लोग इतने सिद्ध योगी बनते हैं। तो हम सबको भी अपने कानों पर और अपनी आंखों पर बहुत ध्यान रखना है। इस संसार के प्रति हमारी रुचि न हो, इस संसार को देखने का, इसको टेस्ट करने का मन में इच्छा न हो, हम अपने अंदर एक डिसइंटरेस्ट अरुचि जगाएं इस संसार के प्रति, संसार के लोगों के प्रति। और उसके लिए जरूरी है कि हम अपने आप से बातें करें रोज थोड़ा समय निकालकर, हो सके तो अमृत वेला थोड़ा जल्दी उठ करके यदि हम अपने आप से रोज बातें कर सके तो बहुत ही अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो मन है ना वो एक छोटे बच्चे की तरह है। जैसे एक छोटा बच्चा किसी भी बात को एक बार में नहीं समझता है, माताएं बैठी है ना, सबको बच्चों को पालने का अनुभव है। एक छोटा बच्चा 1 साल का 2 साल का, उसको अगर कोई बात समझानी हो एक बार में समझा पाएंगे? एक बार में वो नहीं समझता है, उसके साथ जोर जबरदस्ती भी नहीं की जा सकती है। अगर उसके साथ जोर जबरदस्ती करेंगे तो भी वो नहीं समझेगा, रोएगा चिल्लाएगा उधम मचाएगा, समझेगा नहीं। तो मां सबसे अच्छा तरीका कौन सा निकालती है, एक ही बात को बार बार समझाती है। उसे पता है कि ये बच्चा है, न तो ये जोर जबरदस्ती की भाषा समझता है, न एक बार में समझता है, एक ही बात को बार बार समझाती है। फाइनली एक दिन ऐसा आता है कि वो बच्चा उस बात को समझ जाता है, और जैसे ही उस बात को समझता है वहां से ही उसका परिवर्तन शुरू हो जाता है। हमारा मन भी एक छोटे बच्चे की तरह है, इसको भी जोर जबरदस्ती की भाषा समझ में नहीं आती, मैं तो अब आज से कुछ नहीं देखूंगा, कुछ नहीं सुनूंगा। नहीं, दृढ़ता हर जगह दृढ़ता काम नहीं आती है, कहीं कहीं पर दृढ़ता आवश्यक है तो कहीं कहीं पर दृढ़ता से काम नहीं बनता है, जोर जबरदस्ती से काम नहीं बनता है। मन को समझाना पड़ता है, सेल्फ काउंसलिंग, हम अपने मन को बैठ करके रोज समझाएं कि हे मन, इस संसार में तुम्हारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं है, इसलिए तुम्हारी रुचि इस संसार में नहीं होनी चाहिए। ये फिल्म, टीवी, इंटरनेट, मोबाइल, इन सब में तुम्हारी रुचि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सब तुम्हें योग के मार्ग से नीचे गिराने वाले हैं। जन्म जन्मांतर तुमने इन सब चीजों का सुख लिया है, विकारों का, व्यक्तियों का, वस्तुओं का, विकारों का, सब कुछ। अब सब कुछ त्याग कर योगी बनने का समय है, इसलिए अब सब बातों से बुद्धि को निकाल, योगी बन जाओ। रोज समझाएं अपने आप को, आप देखेंगे कि धीरे धीरे इस संसार से आपका जो आकर्षण है वो निकलता जा रहा है, और जैसे जैसे संसार से आकर्षण निकलेगा मन के संकल्पों की गति कम होगी, इनपुट कम जाएगा तो जो आउटपुट होगा वो भी क्या होगा, कम होता जाएगा। तो आंखों पर और कानों पर एक योगी का बहुत ध्यान रहना चाहिए। दूसरी बात, समस्याएं, जीवन में जब भी कोई समस्या आती है तो उस समय भी मन में बहुत अधिक विचार चलते हैं। भल हम सब ज्ञानी हैं, कितना भी ज्ञान हमारे पास क्यों न हो, लेकिन अनुभव ये कहता है कि समय पर वो सारा ज्ञान भूल जाता है। अगर हम लंबे समय के अभ्यासी हैं, हमारी अवस्था बहुत अच्छी है, तो जरूर उसका असर होता है। फिर भी अगर जीवन में समस्या आए तो मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होते हैं। ऐसे में क्या करें? सबसे पहले कि समस्या जो हमारे जीवन में आ रही है उसके पीछे कारण क्या है, हमें इसको समझना होगा। यदि समस्याओं पर विजय प्राप्त करना है, समस्या हमारे मन की स्थिति को खराब ना करे, मन में व्यर्थ और नकारात्मक संकल्पों की बाढ़ उत्पन्न ना करे, उसके लिए इसके कारण को समझना बहुत जरूरी है। जीवन में जो भी समस्या आती है उसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला, हमारे जन्म जन्मांतर के पाप। इसलिए जीवन में जब भी कोई समस्या आए हम अपने आप से बैठ करके बातें करें। ये जो खुद से बैठकर बात करने की आदत है ना, एक योगी के लिए बहुत अच्छी आदत है, बहुत जरूरी आदत है, एक बहुत बड़ा गुण है खुद से बातें करना, जिसको बाबा आत्मचिंतन कहते हैं। खुद ही खुद का चिंतन, खुद ही खुद की काउंसलिंग, सेल्फ सजेशन, आत्म परिवर्तन का एक बहुत बड़ा टूल है ये। तो जीवन में जब भी कोई समस्या आए और मन में व्यर्थ उत्पन्न होने लगे तो हम अपने आप को ये समझाएं कि ये मेरे ही कर्मों का फल है, इसे खुशी खुशी स्वीकार करो। हमें ना तो किसी को दोष देने की जरूरत है और ना ही उन समस्याओं को गलत रीति रेस्पॉन्ड करने की जरूरत है, क्योंकि आपकी समस्या के पीछे किसी का भी दोष नहीं है। हमारे जीवन की समस्या के पीछे मेरा ही दोष है, तो हम हर समस्या को खुशी खुशी स्वीकार कर लें, दूसरों को दोष सुना दे और गलत रीति उसका प्रति उत्तर दे करके उसको बढ़ाए भी नहीं, गलत रीति उसका प्रति उत्तर दे करके हम बढ़ाए भी नहीं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को आपने 1000 रुपया दिया, अब वो व्यक्ति मुकर गया, आपको वापस नहीं दे रहा है, क्या हो सकता है इसमें? क्या हो सकता है? हो सकता है हमने कभी उसका लिया हो, ना लौटाया हो, उसने अपना हिसाब ले लिया, हिसाब किताब पूरा, हम खुश रहे। इसका एक पहलू तो ये हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है कि मन में बहुत अधिक व्यर्थ संकल्प, अरे ये कैसा आदमी है, मैं तो इसे अपना दोस्त समझता था, मैं इस पर इतना भरोसा करता था, इसने मेरे साथ विश्वासघात किया, मैं भी अगर मौका मिला तो इसको छोड़ूंगा नहीं, इसको सबक सिखा करके ही रहूंगा। अंदर बदले की भावना, और मन में यदि बदले की भावना उत्पन्न हो जाए तो नींद भी अच्छी तरह से नहीं आती है, उठते सोते जागते हर समय हम उसी चिंतन में रहेंगे कि कब मौका मिले और मैं कब उससे बदला लूं, 1000 की जगह मैं उससे 2000 हड़प कर लूं, नहीं, हमारा पैसा गिर गया, कहीं गुम हो गया, हमको सैलरी मिली थी 10000 की सैलरी थी, कहीं गिर गया। एक व्यक्ति जिसकी 10000 सैलरी हो, महीने भर का खर्च उससे चलता हो, बहुत बड़ी बात है उसके लिए अगर गुम हो जाए तो। इसमें भी दो बातें हो सकती हैं, या तो हम ये सोच करके अपने आप को निश्चिंत कर लें कि किसी जन्म का पाप था, किसी का कर्जा था, उतर गया, चलो आगे से अच्छा रहेगा, जिसको भी मिला होगा उसका भी भला और मेरा भी भला। दूसरा क्या हो सकता है कि सोच सोच करके हम परेशान होते रहें, मेरा तो 10000 चला गया, महीने भर की कमाई चली गई, अब घर में राशन कैसे आएगा, बच्चों की फीस कैसे भरेंगे, सोचने से वो वापस आ जाएगा? नहीं आ जाएगा ना, भगवान ने जीवन दिया है तो वो हमारी नीड्स को भी मैनेज कर ही लेगा, परेशानी थोड़ी अवश्य होगी, और यदि हम मन से हल्के हैं तो सहज और जल्दी मैनेज हो जाता है। तो कहने का मतलब ये कि जीवन की जो समस्याएं हैं वो हमें परेशान करती हैं, परंतु परेशान होना या न होना हमारी समझ पर निर्भर है। समस्या का दूसरा कारण क्या है? एक तो हमारे पूर्व जन्मों के हिसाब किताब, उसके कारण समस्याएं आती हैं, चाहे वो कोई अचानक बीमारी आ जाए, घर में किसी के मृत्यु हो जाए, धन का नुकसान हो जाए, आपस में संबंधों में अचानक से कड़वाहट आ जाए, कोई हमें एकदम से विश्वासघात हमारे साथ कर दे, धोखा दे दे, कई बातें जो पूर्व जन्मों से रिलेटेड हैं, जो हमें परेशान करती हैं। और दूसरा कारण हमारे ही पुराने संस्कार, हमारे ही 5 विकार, इनसे भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, बोल के द्वारा, कर्म के द्वारा, न चाहते भी हम छोटी छोटी समस्याओं को उत्पन्न करते रहते हैं। अंधे की औलाद अंधा, एक ही शब्द था ना, एक बोल था ना, बोलने में कितना समय लगा था, द्रौपदी ने एक बोल ही तो बोला था ना, अंधे की औलाद अंधा, कितना समय लगा होगा बोलने में, लेकिन इस समस्या को सुलझाने में महाभारत को कितने समय लग गए, न जाने कितने महीनों तक वो युद्ध चलता रहा, उनको वनवास जाना पड़ा, अज्ञातवास जाना पड़ा, दो परिवार आपस में बिखर गए, समाज पूरी तरह से नष्ट हो गया। अपने बोल से समस्या उत्पन्न करना, ऐसा तो नहीं था ना कि द्रौपदी का परिवार बच गया। जो समस्या उन्होंने उत्पन्न की उसमें उसके जो अपने प्रियजन थे वो भी मारे गए और कौरवों के भी मारे गए। उसी तरह से लोभ के बस एक किया गया पाप कर्म जो रामायण में कैकेयी ने किया। सारा राज्य किसको मिले? भरत को मिले, मिल गया भरत को। राम ने छोड़ दिया, वनवास चले गए। क्या कैकेयी का जीवन सुखी हो गया? नहीं हुआ ना। जो चाहती थी, जैसा चाहती थी, सब कुछ वैसा ही हुआ। राम को वनवास भी मिला, भरत को गद्दी भी मिली, लेकिन फिर भी उसके जीवन में सुख और शांति नहीं आई, क्योंकि अपने एक लोभ के वश जो उसने कर्म किया, पाप कर्म, उसने उसे कभी भी चैन से रहने नहीं दिया। एक समस्या का रूप ले लिया जो वर्षों तक उसे परेशान करता रहा। तो ये समस्याएं जो हम उत्पन्न करते हैं, ये भी हमें परेशान करती है। अब जो समस्या पूर्व जन्मों के कारण है, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, उसे हमें धैर्यतापूर्वक योग से चुप्त करना है, कुछ योग से कुछ भोग से। लेकिन जो हम अपने बोल और कर्म के द्वारा उत्पन्न करते हैं, उसे तो हम रोक सकते हैं ना। एक ज्ञानी की समझ ऐसी होनी चाहिए कि वो अपने बोल और कर्म से छोटी छोटी समस्याओं को उत्पन्न ना करे। क्यों? क्योंकि ये समस्याएं पुरुषार्थ के मार्ग में बाधा बनती हैं, हमें आगे नहीं बढ़ने देती हैं। और भी इसका बहुत सारा विस्तार है, मैं आपको बस कुछ बातें ही बता रहा हूं। बाकी चीजें आप खुद एक डायरी पेन लेकर के लिस्ट बनाएं और उसको एक प्रोजेक्ट के रूप में लें। उस पर एक एक महीने का पुरुषार्थ का एक अच्छा प्लान बनाएं, उस पर पुरुषार्थ करें कि कैसे हम इन चीजों पर विजय प्राप्त करें, धीरे धीरे इनको अपने वश में करें, कंट्रोल में करें। क्योंकि इसकी लिस्ट लंबी है, सबकी चर्चा एक साथ नहीं की जा सकती है। तो आपकी जानकारी और समझ के लिए हम कुछ चीजों पर यहां डिस्कस कर रहे हैं। कुछ चीजें आपको निकालनी है और फिर उसका एक ईयरली प्लान बनाना है, चाहे वो 15-15 दिन का बनाए, एक एक मास का बनाए, और उस पर अच्छी तरह से चिंतन करें, लिखें और उसको योग में बैठ करके उस पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करें। तो आंख और कान, फिर समस्याएं। उसी तरह से बाबा कहते हैं कि यदि हमारे अंदर साक्षी रहने का गुण नहीं है, दुनिया में लोग ये नहीं जानते हैं साक्षी होना किसे कहते हैं, परंतु हम बाबा के बच्चे तो जानते हैं ना। हम जिस संसार में रहते हैं वहां सब कुछ हमारे मन मुताबिक नहीं होता है, हो भी नहीं सकता है ना। जहां पर सबके मत अलग हैं, संस्कार अलग है, स्वभाव अलग है, कर्म अलग है, वहां पर एक जैसा तो सब कुछ नहीं हो सकता ना। तो जिस संसार में हम रहते हैं वहां सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं होता है, चाहे वो मेरा लौकिक परिवार हो, ईश्वरीय परिवार हो, हमारा वर्क प्लेस हो, कोई भी जगह हो। और जब कोई बात हमारे मन मुताबिक नहीं होती है तो भी मन में बहुत अधिक व्यर्थ संकल्प चलता है। हम चाहते हैं हमारे बच्चे हमारे कथना अनुसार चलें, हमारी इच्छा अनुसार चलें, लेकिन बच्चे हमारे कहने अनुसार नहीं चलते हैं। कुछ होता है माता पिता को? होता है? बुरी संगत में आ गए हैं, उल्टी सीधी चीजें खाने लग गए हैं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं है, घर के परिवार की इज्जत का ख्याल नहीं है उनको, क्या स्थिति होगी आपकी? मन में विचार चलेंगे ना। अब सेंटर पर जाते हैं, सेवाओं में आपका योगदान रहता है, दो बार आपकी बात मान ली गई, चार बार आपकी बात को बहन जी ने रिजेक्ट कर दिया, मन में विचार उठेंगे? हर बार तो बहन जी आपके अनुसार नहीं करेंगे ना, हर बार आपकी बात तो नहीं मानेंगे ना। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे में साक्षी हो जाना एक योगी के लिए परम आवश्यक है। योग की गहराई में यदि जाना है तो साक्षी रहने का गुण हमारे अंदर होना ही चाहिए। जहां पर हमारी बात न मानी जाए या हमारे मन मुताबिक न हो, हम साक्षी हो जाएं और उस चीज को, उस समस्या को या उस बात को समय के लिए छोड़ दें, समय पर छोड़ दें, बाबा पर छोड़ दें, उनके भाग्य पर छोड़ दें। कई बार लगता है कि मैं सही हूं, फिर भी मेरी बात नहीं मानी जा रही है। कई चीजें, कई बार ऐसा होता है कि मेरे आंखों के सामने गलत हो रहा है, हम चाह कर भी उसे नहीं रोक सकते क्योंकि वहां पर हमारा अधिकार नहीं है। साक्षी हो जाएं, सोच सोच करके मन को भारी करने की बजाय, मन की शक्ति को नष्ट करने की बजाय साक्षी हो जाएं। हल्के हो जाएंगे, मन की शक्ति बचेगी, मन एकाग्र होगा, योग में अच्छे अनुभव होंगे। हमें हर हाल में अपने मन को शांत रखना ही है। ऐसी कोई भी बात जो हमारे मन में व्यर्थ उत्पन्न करे उसको छोड़ देना है। बीती बातों का चिंतन करना, हर एक के साथ उसका पास्ट जुड़ा हुआ है और हर एक के पास्ट में कुछ अच्छी बातें भी हैं तो कुछ बुरी बातें भी हैं। अच्छी बातों को हम भूल जाते हैं और बुरी बातें याद रहती हैं, सोच सोच करके दुखी होते रहते हैं। बाबा कहते हैं बीती को भूलते जाओ। ऐसे और भी बहुत सारी बातें हैं, आप बैठ करके लिखेंगे तो इसकी एक लिस्ट बनेगी जिस पर हम सबको पुरुषार्थ करना है। भोजन, बाबा कहते हैं कि एक योगी का यदि भोजन सात्विक नहीं है तो हम कभी भी अपने मन को एकाग्र नहीं कर सकते, मन को वश में नहीं कर सकते। अशुद्ध अन्न खा करके योगी बनना कभी भी संभव नहीं है। मन का सीधा प्रभाव, अन्न का सीधा प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। आज हम लोग मशीन मेड के नाम पर, अनटच्ड फूड के नाम पर चॉकलेट, बिस्किट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स क्या क्या नहीं खाते हैं, पापड़, चिप्स, पर हमारी जो शुद्ध अन्न की परिभाषा है वो बहुत गहरी है। तो इस तरह से यदि हमें अपने मन को शांत करना है, अपने संकल्पों की गति को कम करना है तो हमें इन सब चीजों पर पुरुषार्थ करना होगा, तब जाकर के हमारा मन धीरे धीरे एकाग्र होगा। और आप देखेंगे कि जब मन एकाग्र होता है तो योग में बहुत अच्छे अनुभव होते हैं, गहरे अनुभव होते हैं। और एक बार अगर योग के गहरे अनुभव होने लग गए तो फिर हमारा मन इस संसार की ओर भटकता नहीं है। हमारी जो शिकायत रहती है कि अनुभव नहीं होता, मन एकाग्र नहीं होता, वो सब समाप्त होता जाएगा। योग से रिलेटेड जितने भी कंफ्यूजन हैं वो धीरे धीरे समाप्त होते जाएंगे। तो हम सब यहां से एक ये चीज भी जरूर सीख करके जाएं कि धीरे धीरे हम अपने मन की गति को कम करते चलें। संकल्पों की जो हमारी एक क्या कहें, जो नंबर है ना उसको कम करते जाए, 25,000 से 20,000, फिर 15, फिर 10, फिर 5 तक ले आए, तो योग में बहुत अच्छे अनुभव होंगे। ओम शांति।